السلام علیکم. یہ پارٹ 16 ہے ناول ڈیول مائنڈ. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز قمر خلیل, پیشکش محمد اظہر, مصنف ظہیر احمد. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 16. جو چاہے ویری گڈ, پھر تو میں تمہارا نام بھائی جان رکھوں گا, سب تمہیں بھائی جان کہیں گے اور جھولیا بھی. کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا اور وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے, جبکہ تنویر برے برے سے منہ بنانے لگا. عمران صاحب کچھ کریں, بھوک تو ہم برداشت کر لیں گے لیکن اب پیاس ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے. اگر ہمیں اور تھوڑی دیر تک پانی نہ ملا تو ہمارے لیے اس صحرا میں چلنا بہت مشکل ہو جائے گا, چوہان نے کہا. تمہاری طرح سے میں بھی پیاسا ہوں پیارے, ہونٹوں کے ساتھ اب تو حلق بھی سوکھ کر کانٹا بنتا جا رہا ہے. پانی ملنے کا تو دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. میں تو سوچ رہا ہوں کہ پیاس بجھانے کے لیے ہم کیوں نہ ایک دوسرے کا خون ہی پینا شروع کر لیں, عمران نے کہا. مذاق مت کرو عمران, واقعی اب پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے, جولیا نے منہ بنا کر کہا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, کسی اور کو تو نہیں میں تمہیں اپنا خون ضرور پلا سکتا ہوں. کہو کاٹو اپنی کلائی کی رگ, عمران نے کہا اور جولیا نے غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا. ان کے چاروں طرف کھلا میدان تھا. وہ جس علاقے میں سفر کر رہے تھے وہاں اب دور دور تک کوئی ٹیلا بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی تھی اور ان کے جسم پسینے سے اس بری طرح سے بھیگے ہوئے تھے جیسے کسی دریا میں ڈبکی لگا کر آئے ہوں. ان کے قدم ریت میں دھنس دھنس جا رہے تھے اور بھوک پیاس کی وجہ سے ان کے جسموں میں اس حد تک کمزوری طاری ہو گئی تھی کہ اب ان میں قدم اٹھانے اور آگے بڑھانے کی بھی ساکت نہیں رہ گئی تھی. اپنے ساتھیوں کی مخدوش ہوتی ہوئی حالت کا عمران کو بخوبی اندازہ تھا, لیکن وہ کیا کر سکتا تھا, وہاں پانی نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی. عمران صاحب وہ دیکھیں, اچانک صفدر نے تیز لہجے میں کہا اور عمران نے چونک کر دیکھا. صفدر عقب میں دیکھ رہا تھا جہاں دور آسمان پر سیاہ چادر سی پھیلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. بادل معلوم ہو رہے ہیں, اگر یہ بادل اس طرف آ جائیں اور یہاں بارش ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں شدید گرمی سے بھی نجات مل جائے گی اور بارش کے پانی سے ہم اپنی پیاس بھی بجھا سکتے ہیں, تنویر نے کہا. یہ بادل نہیں ہے, عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اور اس کی بات سن کر وہ سب چونک پڑے. بادل نہیں ہے لیکن, جولیا نے کہنا چاہا, یہ صحرائی طوفان ہے, عمران نے کہا اور طوفان کا سن کر ان کے چہروں پر تشویش ابھر آئی. طوفان؟ جولیا نے پریشان لہجے میں کہا. ہاں, جس طرح آسمان پر گہری سیاہ چادر پھیلتی جا رہی ہے اس سے طوفان کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. طوفان بے حد تیز اور انتہائی خطرناک ہے, ریت ہوا میں بلند ہو کر پھیل رہی ہے اور سیاہ چادر کا روپ اختیار کر رہی ہے اور یہ طوفان اسی طرف آ رہا ہے, عمران نے کہا. یا اللہ کرم, ہم پہلے سے ہی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں. ایک تو یہ صحرا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے, اوپر سے یہ طوفان. یہاں تو طوفان سے بچنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے, خاور نے پریشانی کے عالم میں کہا. ہمیں جلد سے جلد کہیں پناہ لینی ہوگی, اگر ہم اس طوفان کی زد میں آ گئے تو واقعی ہمارا اس طوفان سے بچنا مشکل ہو جائے گا, عمران نے تیز لہجے میں کہا. لیکن ہم اس طوفان سے بچیں گے کیسے؟ صفدر نے بے چین نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. لیکن طوفان سے بچنے کے لیے واقعی ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. طوفان ابھی ان سے کافی دور تھا لیکن اب وہاں بھی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی تھیں اور ریت اڑ اڑ کر ان کے منہ اور آنکھوں میں جانا شروع ہو گئی تھی, جس سے بچنے کے لیے انہوں نے چہروں پر کپڑے ڈھانٹوں کی طرح سے باندھ لیے تھے اور آنکھوں پر گاگلز لگا لیے تھے. یہ وہی گاگلز تھے جو وہ آئل ٹینکر میں پہن کر آئے تھے اور اس طرف آتے ہوئے وہ ساتھ لے آئے تھے. ان گاگلز کی وجہ سے وہ اپنی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے خوفناک طوفان کو آسانی سے دیکھ بھی سکتے تھے اور ریس سے اپنی آنکھیں بھی بچا سکتے تھے. جلدی کرو, سب اپنے جسموں کے گرد رسی لپیٹ کر گرہیں لگا لو, اب ہمیں رسی میں بند کر एक साथ रहना होगा ताकि तूफान हमें अपने साथ उठाकर ना ले जा सके, इमरान ने तेज लहजे में कहा। तो इन सब ने इस बात में सर हिलाए और जल्दी जल्दी अपने कमरों के गिर्द रस्सी लपेटना शुरू हो गए। रस्सी का बंडल काफी बड़ा था, इसलिए इन सब ने आसानी से खुद को बांध लिया था। तूफान की शिद्दत जब तेज होना शुरू हुई तो इमरान के कहने पर वो सब औंधे मुंह रेत पर लेट गए। इमरान ने इन्हें हिदायत दी थी कि वो वक्फे वक्फे से अपनी कमर झटक कर आगे रेंगने की कोशिश करते रहें ताकि इन पर रेत का कोई टीला जमा न हो सके। थोड़ी ही देर में तूफान की तेज झकड़ चलना शुरू हो गए और इन्हें हर तरफ से शाई शाई की तेज आवाजें सुनाई देना शुरू हो गयी। हर तरफ रेत के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे थे जिससे वहां अच्छा खासा अंधेरा फैल गया था। तेज हवाएं इन्हें बार बार ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो रेत से यूं चिपके हुए थे जैसे लोहा मकनती से चिपक जाता है। इन पर रेत ही रेत जमा होती जा रही थी। जैसे ही इन्हें अपनी कमर पर रेत का दबाव बढ़ता हुआ महसूस होता वो कमर झटक कर आगे रेंग जाते। तूफान में लम्हा ब लम्हा शिद्दत आती जा रही थी और अब इन्हें अपने चारों तरफ बड़े बड़े गर्दबाद घूमते हुए दिखाई दे रहे थे जो मोंडर थे। और ये मोंडर इतने बड़े और ताकतवर थे कि इनकी तरफ देखकर इमरान जैसे इंसान की आंखों में भी परेशानी उभर आई थी। मोंडर बिजली की सी तेजी से घूम रहे थे और उनकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों मशीनों के गुरारियां एक साथ और तेजी से घूम रही हों। मोंडर और तेज हवाओं की वजह से इनके जिस्म बार बार ऊपर की तरफ उठ रहे थे। वो खुद को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे लेकिन इस कदर खौफनाक और ताकतवर तूफान का वो कब तक मुकाबला कर सकते थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो खुद को इस मोंडर में जाने से ना बचा सके थे और जैसे ही वो मोंडर की जिद में आए इन्हें एक साथ जोरदार झटके लगे और वो रेत से उठकर बिजली की सी तेजी से तेज रफ्तार मोंडर में घूमते चले गए। इनके मुंह से बेख्तियार चीखें निकल गई थीं। इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका दिमाग किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह से घूम रहा हो। इसने खुद को संभालने की बेहद कोशिश की लेकिन बेसुध दूसरे लम्हे से अपने तेज रफ्तारी से घूमते हुए दिमाग में अंधेरा सा भरता हुआ महसूस हुआ। यस अल्बर्टो है, रास्ता मिलते ही दूसरी तरफ से कंट्रोल रूम के इंचार्ज अल्बर्टो की आवाज सुनाई दी। कार्क फिल्ले स्पीकिंग, कार्क फिल्ले ने मखसूस लहजे में कहा। इसने ही कंट्रोल सेक्शन का नंबर मिलाया था। यस बॉस, दूसरी तरफ से अल्बर्टो ने बड़े मौदवाना लहजे में कहा। तुमने अभी तक मुझे तूफान के बारे में नहीं बताया, तूफान किस पोजीशन में है अब और इस तूफान की सिमत क्या है, कार्क फिल्ले ने पूछा। तूफान का जोर खत्म हो चुका है बॉस, 12 घंटों तक तूफान की शिद्दत बहुत ज्यादा रही थी। सहरा में इंतहाई खौफनाक हद तक तबाही आई थी। टीले एक जगह से खत्म होकर दूसरी जगह जमा हो गए हैं और बेशुमार पहाड़ियां ऐसी हैं जो अपनी जगहों से सिरे से ही गायब हो चुकी हैं। दूसरी तरफ से अल्बर्टो ने जवाब देते हुए कहा, नॉनसेंस, मैं तुमसे डेजर्ट में होने वाली तब्दीली के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे इन पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में बताओ, इन सब का क्या हुआ है, क्या वो सब इस तूफान में हलाक हो गए हैं या नहीं, कार्क फिल्ले ने इंतहा गुस्से लहजे में कहा। इन बेचारों की तो अब हड्डियों का भी कुछ पता नहीं होगा बॉस, तूफान में आने वाले मोंडर F5 की शिद्दत के थे जो दुनिया भर के सबसे बड़े और खौफनाक मोंडर समझे जाते हैं। इन मोंडर्स की जिद में आने वाले टनों वजनी चट्टाने और पहाड़ियां टुकड़े टुकड़े हो सकती हैं। तो इन 9 अफराद की क्या औकात है कि वो इन मोंडर्स से बच सके। वो सब डेजर्ट में जिस जगह मौजूद थे वहाँ F2, F3 और F5 की ताकत के बेशुमार मोंडर्स मौजूद थे जिससे बच निकलना इनके लिए नामुमकिन था। वो सब अगर रेत की तहों में भी छुपे हुए होते तो वो मोंडर्स इन्हें अपने साथ उड़ाकर ले जा सकते थे और इनके साथ ऐसा ही हुआ है। मैंने तूफान थमने के बाद वहाँ सैटेलाइट से बड़े पैमाने पर चेकिंग की है लेकिन वो सब गायब हैं। बॉन्डर इन्हें उठाकर अपने साथ ले गए हैं। अब इनका नाम निशान तक बाकी नहीं है। दूसरी तरफ से एल्बर्ट टू ने मुसरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, और एल्बर्ट टू का जवाब सुनकर काकसल्ली की आंखों में मुसरत के बेपनाह दिए जल उठे। क्या तुम कंफर्म हो कि वो सब इन मॉन्डर्स का शिकार हो गए थे? काकसल्ली ने पूछा। यस बॉस, मैं 100% कंफर्म हूँ। मैंने स्क्रीन पर इस तरफ बेशुमार मॉन्डर्स को चकराते हुए देखा था। मैंने इस इलाके के साथ साथ हर डिजर्ट का सारा इलाका छान मारा है, लेकिन इन 9 अफराद का कहीं कोई वजूद बाकी नहीं है। एल्बर्ट टू ने एतमाद भरे लहजे में कहा, गुड शो, रियली गुड शो। इमरान और इसके साथियों की हलाक का सुनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। तूफान वाकई बहुत खौफनाक था। वो लाख जहीन चलाक और शातिर एजेंट हो, लेकिन कुदरत के इस ताकतवर तूफान से लड़ना इनके बस की बात नहीं है। वो कुछ भी कर लेते, लेकिन इस तूफान से नहीं बच सकते थे। काफिले ने मुसरत भरे लहजे में कहा, यस बॉस, और हवा भी ऐसा, हुआ भी ऐसा ही है। दूसरी तरफ से एल्बर्ट टू ने कहा, बहरहाल तुम वक्ते-वक्ते से चेकिंग करते रहना। अगर कहीं इनकी लाशें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं एक जबान बार इनकी लाशें देख लूं तो मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा कि वो सब वाकई हलाक हो चुके हैं, काकसल्ली ने कहा। ओ, इसका मतलब है अभी आपको इनकी हलाकतों का यकीन नहीं आया है बॉस? काकसल्ली की बात सुनकर दूसरी तरफ से एल्बर्ट टू ने चौंक कर कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस एक बार इन सब की लाशें देखना चाहता हूँ, खास तौर पर इस अली इमरान की लाश, जिसके बारे में कहा जाता है कि जहानत में इसका कोई हम पल्ला नहीं है और वो मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी गुजारता है और यकीनी मौत को भी किसी न किसी तरीके से जल देने में कामयाब हो जाता है। वो न सिर्फ खुद यकीनी मौत से बच निकलता है बल्कि अपने साथियों को भी नई जिंदगियां दे देता है, जिसके बारे में किसी को गुमान भी नहीं होता, काकसल्ली ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ये सब माजी की बातें हैं बॉस, इस बार ऐसा नहीं हो सकता। इमरान और उसके साथियों में इतना दम नहीं था कि वो सहराई तूफान का मुकाबला कर सकते। इस तूफान में इनकी हैसियत मामूली तिनकों से ज्यादा नहीं थी, एल्बर्ट टू ने कहा। मैं जानता हूँ और तुम्हारी तरह से भी मुझे भी यकीन है कि इस बार वो जिंदा नहीं बचे होंगे। इनकी इस बार हलाक यकीनी है, 100% यकीनी। मैं बस एक बार अपनी आंखों से इनकी लाशें देखना चाहता हूँ, काकसल्ली ने कहा। लेकिन बॉस, अब इनकी लाशें कहाँ मिलेंगी? तूफान ने तो इनकी लाशों के भी टुकड़े उड़ा दिए होंगे, और ये भी तो हो सकता है कि इनकी लाशों के टुकड़े भी रेत के बड़े टीलों में छुप गए हों, दूसरी तरफ से एल्बर्ट टू ने कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं एक बार इमरान की लाश देखना चाहता हूँ, काकसल्ली ने कहा। इसकी सुई जैसे एक ही जगह अटक कर रह गई थी। तो क्या मैं इनकी लाशें ढूंढने के लिए वहाँ रेड कमांडोज को भेज दूँ? एल्बर्ट टू ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। ओ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम बस सैटेलाइट से चेकिंग करते रहो। हो सकता है कि तेज हवाओं से रेत इस जगह से खत्म हो जाए जहाँ इनकी लाशें हों। इनमें से किसी एक की भी लाश नजर आ गई तो मेरी तसल्ली के लिए काफी होगी, काकसल्ली ने कहा। ओके बॉस, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, लेकिन बॉस अब ये काम मैं कल ही कर सकूंगा, दूसरी तरफ से एल्बर्ट टू ने कहा। क्यों, आज क्यों नहीं? काकसल्ली ने कहा। तूफान का रुख शुमाल की तरफ ही था बॉस। इस तूफान से बचने के लिए मैंने टैनल खोल दिए थे जिनमें हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे ताकि तेज रफ्तार पंखे रेत को हेडक्वार्टर के ऊपर और इर्द गिर्द जमा न होने दें और हेडक्वार्टर के ऊपर रेत का कोई पहाड़ न खड़ा हो जाए। इनमें से मैंने 9 टैनल बंद कर दिए हैं, लेकिन एक टैनल खुला हुआ है। इसके चंद एग्जॉस्ट फैन में कुछ खराबी आ गई है जो मुझे आज ही ठीक करनी होगी और इसमें मुझे काफी वक्त लग सकता है, एल्बर्ट टू ने कहा। ओ ठीक है, तुम फैन ठीक करो। टैनल का जल्द से जल्द बंद होना बेहद जरूरी है, वरना दोबारा तूफान आने की सूरत में टैनल रेत से भर जाएगी। का फिल्ले ने कहा। यस बॉस, एल्बर्ट ने जवाब दिया। ओके, कल से अपनी चेकिंग का दायरा वसी कर देना, इन की लाशें मिल जाए तो अच्छा होगा, वरना शायद मेरी टेंशन किसी तरह से कम ना हो, कार्क फिल्ले ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मैं सुबह X1 हैंडल ड्यूस्ट सिस्टम भी ऑन कर दूंगा। ये सिस्टम रेत की गहराई में भी आसानी से चेकिंग कर सकता है। अगर इनमें से किसी एक की लाश भी सही हालत में हुई और वो किसी रेत के बड़े टीले के नीचे भी हुई तो इसका भी पता चल जाएगा, एल्बर्ट 2 ने कहा। ओ यस, X1 हैंडल ड्यूस्ट सिस्टम से वाकई गहराई में मौजूद इनकी लाशों को भी तलाश किया जा सकता है। गुड, तुम सुबह इसी X1 हैंडल डेविस्ट सिस्टम से चेकिंग करना, कार्क ने कहा। ओके बॉस, दूसरी तरफ से एल्बर्टो ने कहा और कार्क ने जवाबन ओके कहकर रिसीवर कैडल पर रख दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा दिल इमरान और इसके साथियों की हलाक के लिए मान क्यों नहीं रहा। हालांकि हार्ड डेजर्ट में जो तूफान आया था, इस तूफान से माफू के अलफितरत हस्तियां भी नहीं बच सकती थीं। फिर गोश्त पोस्ट के मामूली इंसान वो भला इस तूफान से कैसे बच सकते थे। नहीं नहीं, वो जिंदा नहीं हो सकते, इनकी हलाक यकीनी थी, कतई यकीनी, कार्क फिल्ले ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसी लम्हे इसके सेल फोन की घंटी बज उठी तो इसने चौंक कर मेज पर पड़ा हुआ अपना सेल फोन उठा लिया। इसने डिस्प्ले पर देखा तो इसे चीफ का नाम दिखाई दिया। चीफ का नाम देखकर वो एकदम सीधा हो गया और उसने फौरन सेल फोन का कॉल रिसीविंग बटन ऑन किया और सेल फोन कान से लगा लिया। यस चीफ, कार्क फिल्ले हेयर, कार्क फिल्ले ने मौतबाना लहजे में कहा। कार्क फिल्ले, मैं आज वापस आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से मार्शल सेट लेने की आवाज सुनाई दी। ओ यस चीफ, ठीक है चीफ, अब आपके बेटे की हालत कैसी है? मैं 2 रोज से कोशिश कर रहा था लेकिन आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था, शायद आपने अपना सेल फोन स्विच ऑफ कर रखा था, कार्क फिल्ले ने तेज तेज बोलते हुए कहा। हाँ, मैंने फोन बंद कर रखा था, जॉर्ज की हालत बहुत खराब थी, मैं इसके लिए मुतफक्किर था इसलिए मैंने सेल फोन बंद कर दिया था। अब इसकी हालत बहुत बेहतर है, डॉक्टरों ने जान तोड़ कोशिश करके इसकी जान बचा ली है, इसकी हालत से अब मैं मुतमईन हूँ। जॉर्ज की केयर करने के लिए इसकी माँ यहाँ आ चुकी है, अब मेरी यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से मार्शल सेट लेने ने कहा। ठीक है बॉस, लेकिन जॉर्ज को हुआ क्या था? मेरा मतलब है एक्सीडेंट किस नौयत का था जो उसकी जान पर बनाई थी, कार्क फिल्ले ने पूछा। किसी ने जॉर्ज की कार के ब्रेक फेल कर दिए थे, इस वक्त जॉर्ज कदरे नशे में था, ब्रेक फेल होने की वजह से इसकी कार एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई थी। जॉर्ज के साथ इसके 2 फ्रेंड मौजूद थे, वो दोनों इसी वक्त हलाक हो गए थे। जॉर्ज शदीद जख्मी हो गया था, इसके सर पर आने वाला जख्म बेहद खतरनाक था जो इसकी जान ले सकता था, लेकिन इसे बर वक्त तभी इमदाद मिल गई थी और रेस्क्यू टीम इसे बर वक्त अस्पताल पहुंचाने में कामयाब हो गई थी, जहां डॉक्टरों की टीम ने इसका बर वक्त ऑपरेशन किया था, लेकिन इसके बावजूद जॉर्ज की जिंदगी खतरे में थी। डॉक्टरों का कहना था कि जॉर्ज के लिए अगले 36 घंटे बेहद अहम है, अगर इसे 36 घंटों में होश न आया तो इसका जिंदा बचना नामुमकिन था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जॉर्ज को होश आ गया था। अब इसके चंद माइल्स ऑपरेशन होने हैं जिससे इसकी तबीयत और ज्यादा संभल जाएगी और ये काम इसकी माँ यहाँ आसानी से करा सकती है। मैंने भी डॉक्टरों को अपने बारे में तफसील बता दी है इसलिए वो सब हर हाल में जॉर्ज को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे, दूसरी तरफ से मार्शल सेट लेने ने इसे तफसील बताते हुए कहा। ओ, क्या ये मालूम हुआ है कि जॉर्ज की कार के ब्रेक्स किसने खराब किए थे, कार फिल्ले ने पूछा। नहीं, यहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जल्द ही पता चल जाएगा कि किसने जॉर्ज की कार के ब्रेक फेल किए थे और क्यों, दूसरी तरफ से मार्शल सेकलेने ने कहा। बहरहाल थैंक गॉड चीफ, वरना मैं जॉर्ज के लिए बेहद परेशान था, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी 2-3 बार कॉलें आ चुकी हैं। उन्होंने भी कई बार आपसे रابطہ करने की कोशिश की थी। मैंने इन्हें तसल्ली दे दी है, अगर आपके पास वक्त हो तो आप एक बार खुद इनसे बात करके इन्हें तसल्ली दे दें, काफिले ने कहा। ओ ठीक है, मैं इन्हें कॉल कर लेता हूँ। तुम बताओ, हेडक्वार्टर में कोई मसला तो नहीं हुआ? मार्शल सेक्लेने ने पूछा। नो चीफ, यहाँ भला क्या मसला हो सकता है, काफिले ने चौंक कर कहा। इसे डर था कि कहीं चीफ को पाकिस्तानी एजेंटों की आमद का इल्म तो नहीं हो गया, या किसी तरह से ये पता तो नहीं चल गया कि एयरफोर्स का हारगन अपने 20 साथियों समेत पाकिस्तानी सेक्रेट सर्विस के हाथों हलाक हो चुका है। और वो कोड, ओ ठीक है, रहने दो, मैं इस सिलसिले में वहाँ आकर खुद बात करूँगा, मार्शल सेक्लेने ने कहा। वो सेल फोन पर इन 4 फाइलों के बारे में बात करने जा रहा था जो हेडक्वार्टर में डिकोड की जा रही थी। फिर शायद इसे याद आ गया था कि वो सेल फोन पर बात कर रहा है, इसलिए इसने फौरन बात बदल दी थी। यस चीफ, मैं आपका वेट करूँगा, काकफिले ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा, दूसरी तरफ से मार्शल सेक्लेने ने कहा। यस चीफ, ओके चीफ, काकफिले ने कहा, और दूसरी तरफ से मार्शल सेक्लेने ने रابطہ खत्म कर दिया। काकफिले ने एक तवील सांस लेकर सेल फोन कान से हटाया और इसका बटन ऑफ करके इसे दोबारा मेज पर रख दिया। अच्छा ही हुआ है कि इमरान और इसके साथी चीफ के आने से पहले ही सहराई तूफान में फंस कर हलाक हो गए हैं। अगर चीफ को इनके आने का इल्म हो जाता तो वो यकीनन मेरा कोर्ट मार्शल कर देते। इमरान इसके साथियों के बारे में इन्हें इल्म होता तो वो ये भी जान जाते कि इन्हें इसराइल में आने की दावत मैंने खुद दी थी, काफिले ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसके चेहरे पर इंतहाई संजीदगी थी। वो चलने में सोचता रहा, फिर इसने दोबारा फोन का रिसीवर उठाया और एल्बर्ट 2 को कॉल करने लगा ताकि इसे चीफ की वापसी का बता सके और इन्हें इसे मना कर सके कि वो चीफ से पाकिस्तानी एजेंटों के हवाले से कोई बात नहीं करेगा। और अगले दिन खामोशी से इन सबकी लाशें तलाश करने का काम करता रहेगा। जिस तरह अंधेरे में दूर कहीं जुगनू सा चमकता है, बिल्कुल इसी तरह इमरान के दिमाग के सियाह पर्दे पर एक रोशनी का नुक्ता सा चमका और मादूम हो गया। इमरान का दिमाग एक बार फिर तारीख हो गया था, लेकिन अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि एक बार फिर इसके दिमाग में रोशनी सी पैदा हुई। इस बार इमरान के जिस्म को एक जोरदार झटका भी लगा था। इससे पहले कि इसके दिमाग में पैदा होने वाली रोशनी फिर खत्म हो जाती, इमरान ने लाशौरी तौर पर अपने शऊर को संभालने की कोशिश की। इसकी ये कोशिश इस हद तक कामयाब हुई थी कि इस बारे में इसके दिमाग में अंधेरा नहीं आया था। इसके दिमाग में जो रोशनी पैदा हुई थी, इसका लाशौर फौरन हरकत में आ गया था। इसने फौरन अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया। इसके दिमाग में बार बार धमाके से हो रहे थे और इसका दिमाग बार बार अंधेरों की तरफ जा रहा था, लेकिन इमरान अपनी कुव्वत इरादे से मुसलसल दिमाग को रोशन रखने की कोशिश कर रहा था और फिर इसकी कोशिशें रंग लाना शुरू हो गईं। इसके दिमाग में होने वाले धमाकों की शिद्दत कम होना शुरू हो गई थी। लाशौर में होने के बावजूद इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मुन्नो बोझ तले दबा हुआ हो। चंद ही लम्हों में इसका शोर पैदार हो गया तो खुद को रेत के नीचे दबा हुआ महसूस करके इसका दिल बेख्तियार धड़क उठा। इसकी आंखों पर गागुल थी और तूफान आते ही इसने चेहरे को कपड़े से ढांप लिया था, इसलिए रेत इसके मुंह और नाक में नहीं गई थी। वो रेत में यूं धंसा हुआ था जैसे किसी ने गड़ा खोद कर इसे जमीन में खड़ा कर दिया हो और फिर गड़े से इसका सर बाहर रखकर गड़ा रेत से भर दिया हो। क्योंकि इसका सर रेत से बाहर था, इसे वो आसानी से सांस ले रहा था। रेत ने इसके गागुल के शीशों को बुरी तरह से धुंधला दिया था, इसलिए इसे इर्द गिर्द का माहौल नजर नहीं आ रहा था। इमरान ने अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे ये महसूस करके इसका दिल धक से रह गया कि इसका रेत में धसा हुआ सारा जिस्म जिसे मफलूज हो चुका था, इसके जिस्म के किसी भी हिस्से में जिसे जान नाम की कोई चीज नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपने हाथों को भी हरकत नहीं दे पा रहा था। होश में आते ही इसे शिद्दत से प्यास का एहसास होना शुरू हो गया था और इसने बेख्तियार जबान से होंठों को तर करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी जबान भी खुश थी जैसे हरकत देते हुए इसे अपने दिमाग में तेज दर्द की लहरें भरती हुई महसूस हुई थी। अपने जिस्म को मफलूज महसूस करते ही इमरान के दिमाग में आंधियां सी चलना शुरू हो गई थी। वो समझ गया था कि देर तक रेत की धंसा होने की वजह से इसका तकरीबन सारा जिस्म मफलूज हो गया है, और अगर इसने जल्द से जल्द अपने जिस्म को हरकत देने के काबिल नहीं बनाया तो इसकी दिल की धड़कनें भी रुक जाएंगी और वो इसी हालत में हलाक हो जाएगा। होश में आते ही इसके दिमाग में सबके मंजर किसी फिल्म की तरह से चलना शुरू हो गया था, जब तेज रफ्तार घूमते हुए गर्दबाद के तूफान ने इसे अचानक उठा लिया था और उसके जिस्म के साथ इसका दिमाग भी लट्टू की तरह तेजी से घूमना शुरू हो गया था। इसके जिस्म और दिमाग के घूमने की रफ्तार इस कदर तेज थी कि चंद ही लम्हों में इसके दिमाग में अंधेरा भर गया था। इसके बाद इसे अब होश आया था और वो खुद को रेत में धंसा हुआ महसूस कर रहा था। इमरान को बखूबी याद था कि तूफान आने से कुछ देर पहले इसने तमाम साथियों के साथ खुद को रस्सी से बांध लिया था ताकि तूफान इन्हें अगर उठाकर दूर फेंकने की भी कोशिश करे तो वो एक दूसरे से अलग ना हो सके, वरना न जाने कौन कहां कहां जाकर गिरता। अपने साथियों का ख्याल आते ही वो परेशान हो गया। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांगने लगा कि इसके साथ ही खैरियत से हों और इसके साथ ही रस्सी से बंधे हुए हों, वरना इसके लिए इन सब की तलाश वाकई मुश्किल हो सकती थी। इसका निचला जिस्म चूंकि मफलूज था इसलिए इसे इस बात का भी पता नहीं चल रहा था कि इसकी कमर से रस्सी बंधी भी हुई है या नहीं। अपने साथियों की खैरियत के बारे में जानने के लिए इसे सबसे पहले अपने जिस्म को हरकत में लाने की जरूरत थी। इसने आंखें बंद की और एक लंबी सांस खींची और फिर सांस रोक ली। चंद लम्हों तक वो सांस रोके रहा, फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ना शुरू कर दिया। मुंह पर कपड़ा होने की वजह से इसे सांस लेने में मुश्किल तो आ रही थी, लेकिन इमरान मुश्किलों का मुकाबला करने वाला इंसान था और उसने आखिरी दम तक जद्दोजहद करना सीख रखा था। इसने अपने तमाम साथियों की भी ऐसी ही ट्रेनिंग कर रखी थी ताकि मुश्किल के वक्त वो हौसला ना हारें और जिंदगी बचाने की आखिरी हद तक कोशिश करते रहें। इमरान ने अपना मफलूज जिस्म अमले तनफ्फुस के जरिए दुरुस्त करने का अमल करना शुरू कर दिया था, जिसके लिए वो सांस खींच कर हवा फेफड़ों में भर लेता था और फिर सांस रोक लेता था, फिर सांस आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता हुआ वो एक बार फिर सांस रोक लेता था और कुछ देर बाद दोबारा सांस खींचना शुरू कर देता था। इसने ये अमल 2-3 बार ही दोहराया होगा कि इसे अपने जिस्म के निचले हिस्से में चोटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। जिस्म में चोटियों के रेंगने का एहसास होते ही इमरान खुश हो गया। इसके जिस्म में चोटियां रेंगने का एहसास इस बात की दलील थी कि इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज नहीं हुआ था और वो थोड़ी सी कोशिश के बाद अपने जिस्म को हरकत देने के काबिल बना सकता था। चुनांचे इसने अमले तनफ्फुस का अमल ज्यादा कर दिया। वो लंबा सांस खींच कर देर तक सांस रोके रखता और फिर सांस छोड़कर फेफड़े खाली करके एक बार फिर सांस रोक लेता। कुछ ही देर में इसे अपने बाजुओं की रगों में जमा हुआ खून हरकत करता हुआ महसूस होना शुरू हो गया। इसने हाथ की उंगलियों को हरकत दी तो इसकी उंगलियां हरकत में आ गई। इमरान ने अपना बाजू रेत से बाहर खींचना शुरू कर दिया। हाथ रेत से बाहर खींचते हुए इसे अपने बाजुओं की हड्डियां तटकती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन इमरान ने दांतों पर दांत जमाकर इस तकलीफ को बर्दाश्त करना शुरू कर दिया था और कोशिश करके एक हाथ रेत से बाहर निकाल लिया। जैसे ही इसका हाथ रेत से बाहर आया, इसने अपने मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटाया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। जैसे ही इसके फेफड़ों में ताजा हवा गई, इसके दिमाग की बाकी बंद रगें भी खुलना शुरू हो गईं। ये नॉवेल डेविल माइंड का बकिया हिस्सा पार्ट 17 में समाप्त फरमाएं।